الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلسلة ہے آسان درس قرآن آج سورة آل عمران کی آیت نمبر 104 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں امت کا ایک اجتماعی فریضہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہوتا کہ امت کا ہر فرد اپنے گھر سے نیکی کی دعوت کے لیے نکل پڑے۔ زندگی بیسیوں امور کے مجموعے کا نام ہے، معیشت، معاشرت اور دیگر بہت سے امور زندگی میں سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو کر امر بالمعروف کے فریضے سے کلی طور پہ غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اے مسلمانوں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت کا کام کرنے والا، جو دعوت الی الخیر نیکی کی طرف بلائے، جو بھلائی کا حکم کرے اور جو برائی سے منع کرے۔ تو جب کسی قوم میں خیر کی طرف بلانے والے اور شر سے روکنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ قوم محفوظ رہتی ہے اور اس میں بہتری رہتی ہے۔ اگر شر اور شر پھیلانے والے بڑھتے جائیں اور نیکی کرنے والے اور نیکی کی طرف بلانے والے اور برائی سے روکنے والے کم ہوتے جائیں تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ ملت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں ایک گروہ ایسا ہو کہ جو مستقل بنیادوں پر یہ کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس فریضے کی انجام دہی میں لگا رہے، لیکن اس سے ہٹ کر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص بھی کسی جگہ پہ نیکی کی بات سمجھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی بات سمجھائے، اور جو شخص کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ اسے روکے۔ ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے منع کرے، اور زبان سے بھی اگر منع نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے، کیونکہ جب دل میں برائی کو برا جاننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زوال اور تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا مجموعی طور پہ ایک گروہ ہونا چاہیے اور اس سے ہٹ کر انفرادی طور پہ ہر شخص کو دین کا اتنا مبلغ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں وہ نیکی کی بات کہہ سکے وہ کہے، اور جہاں برائی سے روک سکتا ہو وہاں پر ضرور روکے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لبرلز اور سیکولرز کا بھی زد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہر بندے کا جو معاملہ ہے وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ تم یہ کام کرو یا ہم کسی سے یہ کہیں کہ تم یہ کام نہ کرو۔ یہ سیکولرز اور لبرلز کی زبان پہ وہ الفاظ اور وہ تعلیم ہیں جو مغرب سے اور کفار کی طرف سے آئی، مسلمان کا طریقہ کار یہ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ نہیں۔ اسلام کی تعلیم وہ ہے جو ابھی قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی طرف بلائے، جو بلائی کا حکم دے، جو برائی سے منع کرے، جو لوگوں سے بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھے کہ لوگ جو کرنا چاہیں کرے، جس موقع پہ جو بےہودگی کرنا چاہیں کرے، ہمارا کسی سے کوئی لین دین نہیں۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں، लिहाजा जो मुसलमान है उसके लिए लिबरल्स के कॉलम्स या सेकुलर्स की जो तालीमात है वो नहीं, बल्कि जो खुदा का कुरान है और जो नबी का फरमान है वो हर्फ़ आखिर है, और वो है जो अभी मैंने आपके सामने बयान किया। इसके बाद मजीद इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उन लोगों की तरह ना होना, ए मुसलमानों उन लोगों की तरह ना होना जो आपस में मुतफर्रिक हो गए और उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां आ जाने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ किया और उनके लिए बड़ा अजाब है। यहां जो आयत मुबारक है इसके दो मफहूम बयान किए गए, एक तो अकीदे के एतबार से है और एक अमल के एतबार से। अकीदे के एतबार से इसका माना यह है कि ए मुसलमानों तुम यहूदियों और ईसाइयों की तरह ऐसे ना हो जाना कि अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर बैठो। कोई शख्स दीन का एक जुज लेके उसी को सारा दीन समझ के चल रहा, कोई शख्स दीन के दूसरे हिस्से को लेके उसी को अपना दीन करार दे दे। तो फरमाया कि दीन के इस तरह टुकड़े नहीं करना, दीन पूरे का पूरा ये तुम्हारा दीन है और पूरा दीन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। दीन क्या है? दीन नाम है कुरान का, दीन नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके का, दीन नाम है अकायदे सहीहा का, दीन नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का, दीन नाम है सहाबा किराम की अजमतों को तस्लीम करने का, दीन नाम है नबी पाक अलैहिस्सलाम से अहले बैत से मोहब्बत करने का। तो ये नहीं हो सकता कि आप तौहीद का नाम तो कोई ले लेकिन रिसालत का मर्तबा और मकाम उसकी नज़र में कुछ ना हो, या वो अहले बैत का नाम तो ले लेकिन सहाबा किराम की अजमतों का मुनकिर हो, या वो बुजुर्गान दीन का लफ्ज़ सलफ़ सालहीन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करे लेकिन औलिया किराम के हवाले से उसके दिल के अंदर ऐसा लगे कि जैसे कीना भरा हुआ। तो ये जो तफरीके की राह है और ये जो इंतशार की राह है और ये जो दीन की कुल्लियत से इन्हिराफ की राह है ये नहीं होनी चाहिए। तो फरमाया कि तुम उन लोगों की तरह ना होना कि जिन्होंने जो आपस में मुतफर्रिक हो गए और जो आपस में इख्तिलाफ में पड़ गए हालांकि उनके पास अल्लाह की तरफ से रोशन निशानियां मौजूद थी। और यही अमल के एतबार से देखें तो फरमाया कि ए मुसलमानों तुम आपस में उन लोगों ज़माना जाहिलियत के लोगों की तरह ना होना जो छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ पड़ते थे, एक दूसरे से जुदा हो जाते थे, एक दूसरे से दूर हो जाते थे। तो लिहाजा बहसियत कौम और बहसियत मिल्लत और बहसियत उम्मत ना तो अकीदे के अंदर एक दूसरे से जुदा हो और ना ही अमल के एतबार से एक दूसरे से जुदा होकर लड़ाई झगड़े का शिकार होना। और जिन लोगों ने ऐसा किया था, जो मुतफर्रिक हुए, जिन्होंने दीन के टुकड़े किए, जो आपस में दुश्मनियों में पड़े, फरमाया उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। वो अजाब कब होगा? फरमाया यौम तबयद्दु वुजूहुहुम व तस्वद्दु वुजूह फअम्मल्लज़ीन स्वद्दत वुजूहुहुम अकफरतुम बादा ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। वो अजाब उनके लिए उस दिन होगा जिस दिन कई चेहरे तो रोशन होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे, तो अब अपने कुफर के बदले में अजाब का मजा चखो। ये उन लोगों से कहा जाएगा। तो फिर मैं क्यामत का दिन क्या है कि क्यामत का दिन वो है जिसमें कुछ चेहरे रोशन और कुछ चेहरे स्याह होंगे, और जिनके चेहरे स्याह होंगे वो कौन होंगे कि जिनसे ये कहा जाएगा कि तुम ईमान के बाद कुफर की तरफ आ गए, या तो यौम अलस्त में माना और यौम अलस्त में मानने के बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके काफिर हो, खुदा की रुबूबियत का इनकार करके काफिर हो गए, और या इससे मुराद वो है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले तो ईमान वाले थे कि आप पर ईमान रखते थे कि हम आखिरी नबी को मानेंगे, लेकिन नबी पाक सल्लम के आने के बाद वो कुफर में पड़ गए, तो उनको कहा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफर किया, तो अब अपने कुफर के अजाब का मजा चखो। उसके मुकाबले में जो दूसरे अफराद कि जिनके चेहरे रोशन होंगे। फरमाया वअम्मल लदीन अबयद्दत वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून, और वो लोग जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो हमेशा उसमें रहेंगे। जिनके चेहरे सफेद वो अल्लाह की रहमत में, और ये कौन है? जिनका अकीदा और जिनका अमल दोनों अच्छे थे, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर सच्चा ईमान रखने वाले, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले, और जिनसे मोहब्बत का आपने फरमाया उनसे मोहब्बत करने वाले, और जिनके तरीके पर चलने का फरमाया उस तरीके पर चलने वाले कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तबिउस सवादल आगम। मुसलमानों का जो सबसे बड़ा ग्रोह है अकीदे के एतबार से, उसकी पैरवी करो। या फरमाया वत्तबिउ सबील मन अनाबा इलैया, कुरान की आयत, कि जो मेरे रास्ते की पैरवी करने वाला है तुम उसकी पैरवी करो, जो मेरी तरफ रुजू करने वाला है तुम उसके पीछे चलो। और वो कौन है? वो सालिहीन हैं, वो औलिया किराम हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो आइमा मुज्तहिदीन हैं। तो जो इनके तरीके पर चलने वाला है तो उनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे और वो अल्लाह ताला की रहमत में होंगे। और ये रहमत में होना कितने अरसे के लिए? फरमाया हमेशा हमेशा, ये हमेशा अल्लाह ताला की रहमत में होंगे। तो अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पे चलना और आमाले सालेहा करना, ये वो अजीम चीज है कि जो क़यामत के दिन चेहरों की रोशनी का सबब है। अब इसके बाद फरमाया तिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम हक के साथ तुम्हारे सामने पढ़ते हैं, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। ये जो कुरान ने तालीमात दी हैं तो ये वो रोशन आयात हैं कि जिनमें हक और बातिल को, सही और गलत को बड़ा वाज़ह करके बयान कर दिया गया कि हक का रास्ता ये है, बातिल का रास्ता ये, इस रास्ते पे चलोगे तो नतीजा ये होगा और बातिल के रास्ते पे चलोगे तो अंजाम ये होगा। तो फरमाया कि हमने इसे वाज़ह तौर पे बयान कर दिया, और ये बयान इसलिए किया कि ताकि जिसने हक पे चलना है तो अपनी मर्जी से चले, और जो बातिल पे चलना चाहता है वो भी अपने इख्तियार और अपनी चॉइस से चले। ऐसा नहीं है कि बंदा चले तो राह हक पे और खुदा उसे अजाब दे दे, या चले तो वो कुफर के रास्ते पे और खुदा उसे जन्नत में डाल दे। तो फरमाया अल्लाह ताला बंदों के साथ ऐसा मामला नहीं फरमाएगा, अदल का मामला होगा और अदल से बढ़ के फजर और एहसान का मामला होगा। इसके बाद फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलल्लाहि तुर्जउल उमूर, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ये जमीन व आसमान, दुनिया व आखिरत सब खुदा की है, लिहाजा दुनिया में आमाल के लिए पैदा करना और आखिरत में उन आमाल का सिला और बदला देना, तो ये सब इख्तियार अल्लाह ताला का है। अब उसके बाद दोबारा उम्मत मुस्लिमा को मुखातब करके फरमाया गया, और बड़ी एक जामिर आयत है जो उम्मत की जिम्मेदारियों को बयान करती है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون। ए मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था। उनमें कुछ मुसलमान हैं और उनकी अक्सरियत नाफरमान है। ये आयत मुबारका अपने माना व मफहूम में बड़ी वाज़े है कि उम्मत मुस्लिमा और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम की अजमत और उनकी जिम्मेदारी दोनों को इसमें बयान कर दिया गया। अजमत ये है कि फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, हर नबी की उम्मत अपने जमाने के एतबार से बेहतरीन होती थी, बनी इसराइल के बारे में भी, उनसे ये फरमाया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन लोग हो, लेकिन किस एतबार से? अपने ज़माने के एतबार से। यानी बनी इसराइल दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम थे अपने ज़माने में, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेज दिया और आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो अब वो बेहतरीन का जो मनसब और जिम्मेदारी थी वो इस उम्मत की तरफ मुंतकिल हो गए, यानी हमारी तरफ, जो हम उम्मत मुस्लिमा हैं। तो फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब उम्मत मुस्लिमा वो बेहतरीन उम्मत है कि अब क़यामत तक यही बेहतरीन है। अब क़यामत तक सारी अकवाम पर अल्लाह की बारगाह में जो फायक है, जो बरतर है, वो यही उम्मत है। और ये सारी की सारी जो इसकी जो हिकमत और जो इसका रीज़न है वो क्या है? वो है निस्बत अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, कि ये उम्मत उस नबी की उम्मत है जो सारे नबियों के इमाम है, ये उम्मत उस रसूल की उम्मत है जो सैयदुल मुरसलीन है, ये उम्मत उस महबूब की उम्मत है जो खुदा के महबूब हैं। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के सबब और निस्बत की बरकत से ये उम्मत सारी उम्मतों से अफजल हो गई। अल्लाह ताला ने सवाब ज़्यादा अता फरमाता, इन्हें शब कदर अता फरमाई जिसकी एक रात की इबादत हज़ार महीनों की इबादतों से बेहतर, जिनके थोड़े अमल पर अल्लाह ताला ज़्यादा सवाब अता फरमाता, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में गलबा अता फरमाया और जिनमें अल्लाह ताला ने हज़ारहा हज़ार नहीं बल्कि लाखों औलिया किराम पैदा किए। और ये सारी बरकतें दम कदम की हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब इस बरकत और इस निस्बत के साथ एक जिम्मेदारी भी बयान की कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के सामने जाहिर की गई। इसके साथ जिम्मेदारी यह है कि अब चूंकि सिलसिला नबूवत खत्म हो चुका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा, जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, या इससे पहले मुसलमा कज़्ज़ाब जो ज़माने रिसालत ही में गुजरा, या असवद अंसी, या और इस तरह के दज्जालों की एक तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है जो तारीख के सफात में मौजूद है। तो ये जितने नबूवत के दावेदार थे झूठे और कज़्ज़ाब और दज्जाल थे। तो अब जब नया नबी नहीं आएगा तो जो मखलूक तक खुदा का पैगाम पहुंचाना है, जो अल्लाह ताला का कुरान और अल्लाह की किताब लोगों तक पहुंचानी है, जो तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, वो किसने? सिलसिला नबूवत तो खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन तुम, वो तुम हो, तो बेहतरीन उम्मत हो। अब वो जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब वो फरीजा तुम्हारा है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। और फरमाया कि तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो, और अब इसके साथ फरमा दिया कि वो जो अहले किताब पहले थे अब वो भी ईमान ले आते और वो भी दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाते और वो भी नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम के दामन को थाम लेते, लकान खैर अल्लाहुम, तो ये उनके लिए बेहतर होता। अब वो साबिका फजीलतें और वो साबिका अजमतें वो सारी की सारी तब मिलेंगी कि जब नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम पर ईमान लाएंगे। तो फरमाया अहले किताब अगर ईमान ले आते तो वो जो पहले उनको कहा गया कि तुम बेहतरीन हो, तुम्हें ये फजीलत, तुम्हें ये फजीलत, वो सारी फजीलतें मिलती अगर ईमान लाते आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन फरमाया कि ऐसा है नहीं, उनमें जो ईमान वाले हैं वो थोड़े से हैं, कुछ मुसलमान हैं जो मुसलमान हो गए, जो इस्लाम ले आए, जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो फरमाया कि कुछ मुसलमान है और अक्सरियत व अक्सरहुमुल फासिकून, अक्सर फासिक है, अक्सर नाफरमान, कि जिन्होंने इनकार किया काफिर हुए और काफिर रहे। अच्छा, अब कुछ यहूदी चूंकि मुसलमान हुए थे, जो मुसलमान हुए उनको उनके रिश्तेदारों ने, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, तंग करके रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसे आज भी होता है। देखो, बंदा मुसलमान हो जाए तो जो उसके साबिका मजहब वाले होते हैं तो वो उसको चैन से जीने नहीं देते, तंग करते। तो अब उन लोगों ने जब धमकियां दी तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन यदुरुकुम इल्ला अज़ा व इन युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून। ये जो तुम्हारे साबिका रिश्तेदार हैं, ऐ मुसलमान होने वालों, ये पहले के लोग, ये तुम्हें सताने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनकी मदद नहीं की जाएगी। तो जो नए मुसलमान होने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाया और उनको बशारत दी कि ये जो तुम्हें धमकियां देते हैं, ये सिर्फ ये हो सकता है कि जुबानी कलामी को तंज कर ले, को मजाक उड़ा लें, को मिलना जुलना कम कर दे, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर ये तुम्हारे मुकाबले पर आए तो सब भाग जाएंगे। और अल्लाह ताला का ये फरमान पूरा हुआ कि इन नए मुसलमान होने वालों से जिसने भी मुकाबला करने की कोशिश की, शिकस्त से दो चार हुआ और मुसलमानों ने इनके मुल्कों के मुल्क फतह कर लिए। चुनाचे रूम फतह हुआ, शाम फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, इराक फतह हुआ, फिर दूसरी तरफ जो है वो ईरान किसरा का मुल्क वो फतह हुआ। तो ये जो फतूहात फैलती गई, ये सारी की सारी गैबी खबरें जो यहाँ पर दी गई थी, अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हाथों पर उन फतूहात को मुकम्मल फरमाया और उन बशारतों को पूरा फरमाया। अब ये जो दुश्मन थे, जो बतौर ख़ास यहाँ पर अहले किताब में जो यहूद हैं उनके हवाले से कलाम है, तो फरमाया कि ये लोग कि जो तुमसे मुकाबले की बातें करते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, इनका मामला क्या है, इनका मुस्तकबिल अब जो होने वाला है, अब यहां पर वो बयान किया गया, वो क्या है। फरमाया दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु अइनमा सुक़िफ़ु इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नासि व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह व दुरिबत अलैहिमुल्मस्कनाह ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। ये जहां भी पाए जाए इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई, सिवाय इसके कि इन्हें अल्लाह की तरफ से सहारा मिल जाए या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए। ये धमकियां देने वाले ये अल्लाह के गजब के मुस्तहिक हैं और इन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई। ये इस वजह से है कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक शहीद करते थे, और इसलिए कि वो नाफरमान और सरकश थे। ये यहूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये बनी इसराइल जो इस वक्त धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं, फरमाया इनके लिए लिख दिया गया कि इनके ऊपर जिल्लत है, ये दुनिया में जहां भी जाएंगे रुसवा होंगे। और कुरान की इस आयत से लेकर आज तक आप देख लें, इनकी पूरी तारीफ पढ़ के देख लें, आपको कदम कदम पर यह मिलेगा कि जिस मुल्क में गए वहां पर ये पसपा होके रहे, वहां ये नीचे होके रहे, और जिल्लत और मस्कनत इन पर मुसल्लत रही। और अगर ये अपने उस पस्ती से निकले तो कैसे, जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया कि या तो खुदा का सहारा मिल जाए कि मुसलमान हो जाए, तो जो मुसलमान हुए, जैसे मिस्र जो है वो बनी इसराइल का मरकज था, तो वहां के लोग मुसलमान हुए, तो अब उसके बाद दुनिया पे गालिब भी हो, तो ये अल्लाह का सहारा मिला। और दूसरा फरमाया कि या लोगों की तरफ से सहारा मिल जाए कि इन जो जिल्लतो रुसवाई का शिकार लोग हैं, इन्हें लोगों का सहारा मिल जाए कि कोई गैर मुस्लिम ताकत इनको सहारा दे दे। और आज की आप तारीख देख लें कि दुनिया में ये बनी इसराइल और यहूद जो हैं, अगर ये इस वक्त अपनी जगह पे खड़े हैं और मजबूत हैं तो उसके पीछे सहारा है। एक मरतबा सहारा हटे उसके बाद आप अंजाम देखें। तो कुरान ने जैसे फरमाया था वैसे हुआ कि या तो खुदा का सहारा मिल जाए कि ईमान ले आए, और या ये है कि कोई बड़ी ताकत जो है वो इनको थाम के रखे और इनकी सपोर्ट करे और इनकी पुश्त पनाही करे और इनके मद्दे मुकाबिल आने वालों को दबाती रहे, तब ये अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, जैसा कि आज नजर आता है। तो ये कुरान की वो खबर थी जो एज इट इज साबित हुई कि जैसा फरमाया वैसा हुआ। और ये जो इन लोगों के ऊपर ये जिल्लत और गुर्बत मुसल्लत हुई, उसकी वजह क्या, फरमाया कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, नबियों को शहीद करते थे, खुदा के नबियों को कत्ल कर दिया करते थे माद अल्लाह, और इसके साथ नाफरमान भी थे, सरकश भी थे और सरकशी के आदि थे। अब इन लोगों के बारे में जो बयान किया गया तो उससे बज़ाहिर तासुर ये मिलता है कि ये सारे के सारे ऐसे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनमें कुछ बेहतर हालत में भी हैं, इनमें कुछ बेहतर हालत में भी हैं। फरमाया लैसु सवाअन मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आना अल्लैलि वहुम यस्जुदून। फरमाया ये सब एक जैसे नहीं, अहले किताब में कुछ वो लोग भी हैं जो हक पर कायम हैं, वो रात के लम्हात में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदा करते हैं। तो फरमाया कि ये जो बुराई का महवर मरकज बने हुए लोग हैं, इनमें थोड़े से अच्छे वाले भी हैं, और वो अच्छे वाले वो हैं जो खुदा की सच्ची किताब की तिलावत करते हैं रात की घड़ियों में, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और खुदा की बारगाह में सजदे करते हैं। इसलिए भी पता चला कि इबादत गुजार बंदा ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहने की वजह से ज्यादातर हक पे रहता है, और दूसरा रातों को इबादत करना और रात को तिलावत करना और रात को सजदे करना ये हमेशा से सालिहीन का तरीका चलता। इसीलिए सहाबा किराम, औलिया किराम, इनके अहवाल में हालात में क्या मिलता है, तहज्जुद गुजार थे, शब्बेदार थे, रात को तिलावत करते थे, खुदा की बारगाह में सजदे में रहते थे। तो तहज्जुद और शब्बेदारी और क़ियामुल लैल ये बड़ी अजीम इबादतें हैं, इसमें जितना जिसको हो सके उसको इस पर अमल करना चाहिए। अहले किताब के उसी अच्छे गिरोह के बारे में मजीद इरशाद फरमाया युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यामुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं, और ये लोग खास बंदों में से हैं। अहले किताब के भी जो अच्छे लोग थे उनकी तारीफ और उनके औसाफ बयान फरमाए, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना और नेकी के कामों में जल्दी करना, ये पांच औसाफ बयान फरमाए। इससे पिछली आयत के अंदर मजीद औसाफ थे कि रात को अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। ये जो सात औसाफ हैं ये यूं समझ लें कि ये हर मर्द मोमिन और मर्द सालेह के आमाल हैं। क़ियामुल लैल हो, रात को कुछ इबादत की जाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया जाए, खुदा पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो, नेकी का हुक्म देने की आदत हो, बुराई से मना करने का जज्बा हो, और इसके साथ नेकी के कामों में जल्दी हो, सुस्ती ना हो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग नेकी कर रहे हैं या नेक लोग नेकी कर रहे हैं और आदमी सुस्त होकर साइड में बैठा हुआ, लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं ये पीछे बैठ कर गप्पे मार रहे हैं, जैसे बहुत से लोग मस्जिदों में भी करते हैं, तरावी हो रही होती है पीछे बैठ कर गप्पे मार रहे हैं। तो फरमाया कि नेकी के कामों में जल्दी करने वाले और ये हैं अल्लाह के खास बंदे। तो अब ये जो नेकियां करने वाले हैं, फरमाया वमा यफअलू मिन खैरिन फलन युकफरूह वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। और ये लोग जो नेक काम करते हैं हरगिज इस नेकी पर इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी, और अल्लाह डरने वालों को जानता है। जो लोग ये नेकियां करते हैं तो फरमाया कि इनकी नाकदरी नहीं की जाएगी बल्कि इनके आमाल की कदर की जाएगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, इन्हें सिला दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। अब ये अच्छे लोगों को तस्करे के बाद, अब वो लोग कि जो अपने माल की वजह से या अपनी औलाद की वजह से ईमान से महरूम रहे, बहुत से लोग तो ईमान इसलिए नहीं लाए कि भाई कहीं उनकी औलाद उनके खिलाफ ना हो जाए, या इसलिए ईमान नहीं लाए कि उन्हें माली महरूमियों का सामना ना करना पड़ जाए। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में फरमाया इन्नल लदीन कफरू लन तुगनी अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ वाउलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। वो लोग जो काफिर हुए उनके माल और उनकी औलाद उन्हें अल्लाह के अजाब से कुछ बचा ना सकेंगे, और यही लोग जहन्नमी हैं, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ये आयत मुबारक है तो काफिरों के बारे में, कि काफिर अगर औलाद या दौलत की वजह से ईमान कबूल नहीं करता तो ये औलाद और ये दौलत उसके कोई काम नहीं आएगी। लेकिन यही बात हमारे लिए भी है कि जिस औलाद की वजह से और जिस माल की खातिर बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करता है तो ये औलाद जो है ये उन गुनाहों का बदला नहीं बनेगी। क़यामत के दिन यही औलाद एक नेकी देने से भी भागेगी। अगर बाप ये कहेगा ना कि तेरे ऊपर मैंने जिंदगी में 1 अरब रुपया खर्च किया था, तेरे लिए महल बनाया, गाड़ियां, बंगले, ये सब कुछ बनाया, एक नेकी दे दो, औलाद एक नेकी भी नहीं देगी। तो लिहाजा औलाद की खातिर, बीवी की खातिर, रिश्तेदारों की खातिर खुदा की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। उनकी खातिर हराम कमाना और हराम में पड़े रहना ये नहीं होना चाहिए। और इसी तरह माल की खातिर और दुनिया की खातिर खुदा की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करना और कमाई का हराम रास्ता इख्तियार करना ये नहीं होना चाहिए। ना ये क़यामत के दिन ऐसा माल काम आएगा, ना ऐसी औलाद काम आएगी। नेक औलाद होगी तो वो काम आएगी, और उसके साथ माल हलाल तरीके से कमाया होगा, नेक जगह पे खर्च किया होगा तो वो काम आएगा। अब जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं तो उसकी भी अल्लाह ताला ने आगे मजीद जो है वो उसकी काफ़ी तौजीह फरमाई है कि अल्लाह की राह में खर्च किया गया माल भी तब फ़ायदा देगा जब हालत ईमान में खर्च किया हो और मकसूद अल्लाह की रजा हो। काफिर ने खर्च किया तो भले नेकी में खर्च किया, आखिरत में कोई सिला नहीं, और अल्लाह की राह में दिया तो है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं बल्कि रियाकारी के लिए, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। उसको फरमाया मसलु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया का मसलि रीहिन फीहा सिल्लुन असाबत हर्स कौमिन ज़लमू अन्फुसहुम फअहलकत वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अन्फुसहुम यज़लिमून। इस दुनियावी जिंदगी में जो खर्च करते हैं इसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें शदीद ठंड हो, वो हवा किसी ऐसी कौम की खेती को जा पहुंचे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हो तो वो हवा उस खेती को हलाक कर दे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। फरमाया कि जो बंदा कुफ्र या रियाकारी के साथ खर्च करता है तो ये ऐसे है कि जैसे एक शदीद ठंडी हवा है। अब वो शदीद ठंडी हवा क्या है? वो कुफ्र है या वो रियाकारी है, और इनके जो अमाल की खेती है जो इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया है वो कुफ्र की आंधी इनके अमाल की खेती को बर्बाद कर देगी, या वो रियाकारी की ठंडी हवा यानी कि शदीद मोहलिक ठंडी हवा वो इनके आमाल की खेती को बर्बाद कर दे। लिहाजा नेकियों का सवाब चाहिए तो पहली शर्त ईमान है और दूसरी शर्त रिजाए इलाही की नियत होना है। अल्लाह की रजा मतलूब नहीं और रियाकारी मतलूब है तो ये आमाल जो बंदे ने मशक्क़त से किए भी होंगे बर्बाद हो जाएंगे। तो अब इन अमाल का सवाब ना मिलना ये कोई ज्यादती नहीं है, ये तो खुद इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया कि इन्होंने अमल को किया ही ऐसे कि उसकी शर्तें पूरी ना थी। अब इसके बाद मुसलमानों को कुछ तालीमात अहले किताब के हवाले से बयान फरमाई हैं। फरमाई या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनितुम قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। फरमाए ऐ ईमान वालो गैरों को राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, बेशक उनका बुग्स तो उनके मुंह से जाहिर हो चुका है और जो उनके दिलों में छुपा हुआ है वो इससे भी बढ़कर है। बेशक हमने तुम्हारे लिए खोल कर आयतें बयान कर दी अगर तुम अक्ल रखते हो। ये जो आयत मुबारक है जो इसमें हुक्म दिया गया है इसका एक पूरा सियाको सबाक है, और इसके पीछे जो है वो जिंदगी की एक बहुत बड़ी यूं समझ लें कि एक नसीहत है। यहाँ पर जो सियाको सबाक है वो ये है कि बाज़ मुसलमान अपने पड़ोसियों और अपने उन रिश्तेदारों से मिलते जो इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन चूंकि पड़ोसी भी थे या रिश्तेदार भी थे, तो इसके बावजूद उनसे मेल जोल लगते थे, और मेल जोल बढ़ते बढ़ते दोस्तियों में बदल जाता है, दिली ताल्लुक में बदल जाता है। तो जाहिरी मेल जोल जिसे मुआशरा कहते हैं, उसकी तो शरीयत में इजाजत है कि किसी का पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो ये उसके साथ आमना सामना हो तो मिल सकता है, हाल चाल पूछ सकता है, तो इतना मिलने मिलाने की तो इजाजत है। लेकिन उनके साथ दोस्तियां लगाना और उनसे कलबी मोहब्बत करना और उनके साथ ऐसा मेल जोल कि जिससे कोई फर्क ही पता ना चले, इस तरह का जो मेल जोल है ये मना है। अब वो जो मुसलमान अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों से खुल्लम खुल्ला मिलते जुलते थे और उनकी दोस्तियां यारियां जो है वो बनने की सूरत जो है वो नजर आ रही थी, तो फरमाया कि ए ईमान वालो, इन गैरों को अपना राजदार ना बनाओ। तुम तो इनको ये समझ के कि यार पड़ोसी है, रिश्तेदार है, तुम इनसे बातें कर लेते हो, इन्हें अपने राज भी बता देते हो, लेकिन इनके दिलों में तो अल्लाह रसूल की दुश्मनी है, इनके दिलों के अंदर तो कुफर या निफाक छुपा हुआ है, मुनाफिकत छुपी हुई है, तो ये क्या करेंगे? फरमाया कि ये तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, ये जहां तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते होंगे ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और ये तो चाहते हैं कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, तुम तकलीफ और आजमाइश का शिकार हो जाओ। जो अपने मुंह से बात करते हैं उसी से इनके दिलों का बुग्ज कुछ ना कुछ जाहिर हो जाता है, कि जब ये इस्लाम पर कोई ताना देते हैं या इस्लाम के बारे में कोई ऐसी मनफी बात कहते हैं कि सुनने वाले को तकलीफ भी हो और इस्लाम के हवाले से थोड़ा सा शक का शिकार भी हो जाए, तो ये इस तरह की बातें तो अपनी जबान से बोल रहे हैं, और ये जबान की बातें इनके दिल की पूरी तर्जमानी नहीं कर रही, बल्कि जो इनके दिलों में छुपा हुआ है, जो बुग्ज कीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में और मुसलमानों के बारे में इनके दिलों में है, फरमाया वो तो बहुत बड़ा है, जबान से तो थोड़ा बोल रहे हैं, दिलों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो फरमाया कि लिहाजा इन लोगों को अपना दोस्त ना बनाओ। फरमाया बेशक हमने तुम्हारे लिए आयतें खोल कर बयान कर दी अगर तुम्हें अकल हो। अब ये जो आखिर में फरमाया ना कि अगर तुम्हें अकल हो, तो ये जहन में रखो कि हमने ये अहकाम तुम्हारे सामने खोल कर बयान कर दिए। मकसूद ये है कि ये एक बड़ी जो है वो एक मुस्तकबिल की बात की तरफ इशारा भी है, कि बहुत से लोग बोलेंगे अरे नहीं यार, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो दोस्त हैं, ये तो पड़ोसी हैं, ये तो रिश्तेदार हैं, कोई मसला नहीं है, ये भी अपने हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें अकल है तो इन नसीहतों पर तवज्जो दो, हमने तुम्हारे सामने अपने अहकाम और अपनी आयतें बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और कुरान के ये फरामीन ऐसे बरहक हैं कि बाद लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ उस जमाने के बारे में है, उस जमाने के बारे में सिर्फ नहीं है, ये आज तक और क्यामत तक के अहकाम हैं। अब भी दुनिया में जहां कहीं इस्लाम और कुफ्र का मुकाबला होता है तो वही पड़ोसी और वही रिश्तेदार और वही ताल्लुक वाले कि जिन्हें बड़ा करीबी समझा जा रहा होता है और जिन्हें समझते कि नहीं यार ये तो बड़े मॉडरेट हैं, बड़े नरम से हैं, बड़े अच्छे हैं, वही लोग अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी फौज और अपने लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होते हैं। अभी माजी करीब की तारीख सिर्फ देख ले, माजी करीब की सिर्फ जो है ना वो आप 1990 से शुरू कर लें, 1990 से शुरू कर लें और आज तक की तारीख के दरमियान होने वाले जो दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हैं उनको देख लें, कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि इन्हें अपना ना समझना, इन्हें अपना राजदार ना बनाना, ये तुम्हारी बुराई के चाहने वाले हैं, तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, उन्हें देख ले वो कहाँ खड़े होते हैं। तो तारीख और कुरान और हदीस की तालीमात बताती हैं कि अपनों के साथ जो है वो रहा जाए, गैरों को राजदार ना बनाया जाए, वरना उनको जब मौका मिलेगा तो वो नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का फहम अता फरमाए और इसके अहकाम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।